ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 7 श्लोक संख्या 1 से 12 और यहां बोर्ड पे श्लोक संख्या 12 है। अध्याय का शीर्षक है इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान। तो हम पहले जो श्लोक हैं 1 से 11 तक वो पढ़ेंगे, उसके बाद आज का श्लोक उच्चारण करेंगे। तो हम केवल अनुवाद पढ़ रहे हैं, ये श्लोक संख्या 1 है। बृहस्पति को सब कुछ ज्ञात था कि भविष्य में क्या होने वाला है। इंद्र द्वारा सारे शिष्टाचार का उल्लंघन देखकर वह समझ गए कि इंद्र ऐश्वर्य के मद से फूल उठा है। चाहते तो वह इंद्र को शाप दे सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह उस सभा से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आए। श्लोक संख्या 10। क्षमा करिए, ये तो आगे का पढ़ दिया मैं। श्लोक संख्या 1। महाराज परीक्षित ने सुखदेव को स्वामी से पूछा, हे मुनि, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने देवताओं का परित्याग क्यों किया जो उनके ही शिष्य थे? देवताओं ने अपने गुरु के साथ ऐसा कौन सा अपराध किया? कृपा मुझे इस घटना का वर्णन करें। अब श्लोक संख्या 2 से लेकर 8 तक एक साथ है, अनुवाद एक साथ दिया हुआ है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, एक बार तीनों लोगों के ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित हो जाने के कारण स्वर्ग के राजा इंद्र ने वैदिक आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। वह सिंहासन पर आसीन थे और उनके चारों ओर सभी मरुत, वसु, रुद्र, आदित्य, ऋभु, विश्वदेव, साध्य, अश्विनी कुमार, सिद्ध, चारण, गंधर्व तथा बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अतिरिक्त विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पतंग, पक्षियां तथा उरग, सर्प भी बैठे थे। वह सभी इंद्र की स्तुति और सेवा कर रहे थे और अप्सराएं तथा गंधर्व नाच रहे थे और अपने वाद्य यंत्रों के साथ गायन कर रहे थे। इंद्र के सर पर पूर्ण चंद्रमा के समान तेजवान श्वेत छत्र तना था, चंवर झला जा रहा था और समस्त राजसी ठाट बाट सजा था। इंद्र अपनी पत्नी शशि देवी सहित सिंहासन पर बैठे थे। तभी उस सभा में परम साधु बृहस्पति का प्रवेश हुआ। बृहस्पति इंद्र समेत सभी देवताओं के गुरु थे और देवताओं तथा असुरों के द्वारा समान रूप से सम्मानित थे, तो भी अपने गुरु को समक्ष देखकर इंद्र ना तो अपने आसन से उठे, ना अपने गुरु को बैठने के लिए आसन दिया और ना उनका स्वागत ही किया। तात्पर्य यह है कि इंद्र ने सम्मान पूर्वक कोई भी कार्य नहीं किया। बृहस्पति को सब कुछ ज्ञात था कि भविष्य में क्या होने वाला है। इंद्र द्वारा सारे शिष्टाचार का उल्लंघन देखकर वह समझ गए कि इंद्र ऐश्वर्य के मद से फूल उठा है। चाहे तो वह इंद्र को शाप दे सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह उस सभा से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आए। श्लोक संख्या 10। स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुरंत ही अपनी भूल समझ ली, ये जानते हुए कि उन्होंने अपने गुरु का निरादर किया है। उस सभा के समस्त सदस्यों के समक्ष उन्होंने स्वयं ही अपनी भर्त्सना की। श्लोक संख्या 11। ओ अपनी मंद बुद्धि तथा भौतिक ऐश्वर्य के मद वश मैंने ये क्या कर लिया? जब मेरे गुरु सभा में प्रविष्ट तो मैंने उनका सत्कार क्यों नहीं किया? सचमुच मैंने उनका अनादर किया है। ये आज का श्लोक है जो कि बोर्ड पे है। श्लोक संख्या 12। को गृध्येत पंडितः लक्ष्मी त्रिपिष्ट कपते अपि यया अहम् आसुर भाव नीतः अद्य विबुद्ध ईश्वरः। को गृध्येत पंडितो लक्ष्मी त्रिपृष्ठपतेरपि ययाहमासुरं भावम् नीतोऽद्य विबुधेश्वरः को गृध्येत् पंडितो लक्ष्मी त्रिपृष्ठपतेरपि ययाहमासुरं भावम् नीतोऽद्य विबुधेश्वरः को गृध्येत् पंडितो लक्ष्मी त्रिपृष्ठपतेरपि ययाहमासुरं भावम् नीतोऽद्य विबुधेश्वरः कः कौन गृध्येत् स्वीकार करेगा पंडित विद्वान मनुष्य लक्ष्मी ऐश्वर्य त्रिपृष्ठपते अपि यद्यपि मैं देवताओं के स्वामी हूं यया जिससे अहम मैं आसुरम आसुरी भाव विचार नीतः लाकर अद्य अब विबुध देवताओं के जो सतोगुण युक्त हैं ईश्वरः राजा अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। यद्यपि मैं सतोगुणी देवताओं का राजा हूं किंतु थोड़े से ऐश्वर्य से गर्वित और अहंकार से दूषित हो उठा भला ऐसी दशा में कौन इस ऐश्वर्य को स्वीकार करेगा जिससे उसका पतन हो। हाय मेरे ऐश्वर्य को धिकार है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु श्री भगवान से प्रार्थना की थी न धनम न जन्म न सुंदरेम कविता व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहित हेतु। हे ईश्वर मुझे ना तो धन या ऐश्वर्य की कामना है ना मैं चाहता हूं कि मेरे अनेक अनुयायी हूं और जो मुझे अपना नायक माने ना ही मुझे अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए स्त्री की आवश्यकता है। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहित हेतु मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए मैं तो यही चाहता हूं कि जन्म जन्मांतर आपका आज्ञाकारी दास बना रहूं। प्रकृति का नियम है कि जब कोई अत्यंत ऐश्वर्यशाली हो जाता है तो उसका पतन होने लगता है। ये व्यष्टि तथा समष्टि पर समान रूप से लागू होती है। सभी देवता सतोगुणी है किंतु कभी कभी देवताओं के राजा इंद्र भी अपने ऐश्वर्य के कारण नीचे गिर जाते हैं। आजकल हम अमरीका में ये देख रहे हैं समग्र अमरीका राष्ट्र ने आदर्श मनुष्य उत्पन्न किए बिना भौतिक ऐश्वर्य में प्रगति करने का प्रयास किया है। इसका फल ये हुआ है कि सभी अमरीकी लोग अमरीकी समाज में अत्याचारों से आक्रांत हैं और आश्चर्यचकित हैं कि इतना अनाचार कैसे व्याप्त है। जैसा कि श्रीमद् भागवत 7:5:31 में कहा गया है नाते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु जो प्रबुद्ध नहीं है उनको जीवन का उद्देश्य जो वास्तव में भगवान के धाम को जाना है ज्ञात है वे व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों ही प्रकार से तथाकथित भौतिक सुविधाओं को भोगना चाहते हैं और सुरा तथा सुंदरी के आदि हो जाते हैं। ऐसे समाज का व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी से भी निम्न होता है वे वर्णाशंकर कहलाता है। जैसे कि भगवदगीता में उल्लेख है वर्णाशंकर जनता की वृद्धि से नारकीय समाज की सृष्टि होती है। आज अमरीकी लोग अपने आप को ऐसे ही समाज में पाते हैं किंतु सौभाग्यवश अमेरिका में हरे कृष्ण आंदोलन का सूत्रपात हो चुका है और अनेक भाग्यशाली नवयुवक इस आंदोलन के प्रति सचेष्ट हैं। इसके द्वारा कुछ चरित्र वाले आदर्श व्यक्ति हो रहे हैं जो मांसाहार अवैध मैथुन मद्यपान तथा दूध क्रीड़ा से अपने को सर्वथा दूर रखते हैं। यदि अमरीकी लोग अपने राष्ट्र के अवनत अपराधपूर्ण जीवन पर रोक लगाने के लिए उत्सुक है तो उसे चाहिए कि वे श्रीकृष्ण भावनामृत आंदोलन को अंगीकार करें और ऐसे मानव समाज का निर्माण करें जो भगवदगीता में उल्लिखित है चातुर्वर्णया माया सिस्टम गुण कर्म भाग्यशा। उन्हें चाहिए कि समाज को प्रथम द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के व्यक्तियों में विभाजित करें क्योंकि उनमें अभी तो चतुर्थ श्रेणी से भी निम्न लोग उत्पन्न है। अपराधी समाज के संकटों से कैसे बचा जा सकता है। बहुत काल बीता जब श्री इंद्र को अपने गुरु बृहस्पति का अनादर करने पर पश्चाताप हुआ इसी प्रकार ये सलाह दी जाती है कि अमरीकी लोग अपने ब्रह्मपूर्ण उन्नत सभ्यता के लिए पश्चाताप करें। उन्हें चाहिए कि भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु से उपदेश ग्रहण करें यदि वे ऐसा करेंगे तो सुखी होंगे और उनका राष्ट्र आदर्श राष्ट्र बनेगा जो सारे विश्व का पथ प्रदर्शक बन सकेगा। यदि भी मैं सत्य सत्वगुणी देवताओं का राजा हूं किंतु थोड़े से ऐश्वर्य से गर्वित और अहंकार से दूषित होता, भला ऐसी दशा में कौन इस ऐश्वर्य को स्वीकार करेगा जिससे उसका पतन हो। हाय मेरा ऐश्वर्य को धिकार। तो देवतागण जो है यहां वर्णन आ रहा है कि वो सत्वगुण में होते हैं और इंद्र भी उसमें से एक है, लेकिन इससे संकेत मिल रहा है कि कोई सत्व गुण में क्यों ना हो, ये भी बंधन का कारण है। और सत्व गुण में ये अहंकार हो जाता है कि मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत खुश हूं, ज्ञान से बन जाता है व्यक्ति। सत्व गुण में सुख मिलता है, सात्विक सुख मिलता है और उसी को ही वास्तविक सुख मान बैठता है एक बद्ध जीव, जैसे कि दुखालयम अशाश्वतम भगवान कह रहे हैं गीता में। लेकिन सत्वगुण में सुख जब मिलता है तो लगता है कि संसार बड़ा अच्छा है, हम योगा कर रहे हैं, प्रातःकाल जाते हैं पार्क में, वहां प्राणायाम करते हैं, है ना, लोगों से मिलते हैं, सात्विक आहार ले रहे हैं, है ना। तो इस तरह से लोगों के अंदर जो है ये भ्रांति आ जाती है, भ्रम आ जाता है कि हम जो है सत्वगुण में है, हम बहुत शांत हैं, हम बहुत सुखी हैं, ये संसार कितना अच्छा है, है ना। हम प्रकृति के अंतर्गत रहते हैं, हरियाली है चारों तरफ, है ना, कितना आकाश कितना नीला है, देखिए बादल नहीं है, प्रकृति की प्रशंसा करते हैं हम। जैसे नारद जी जो है वो भगवान का दर्शन किए थे लेकिन ओझल हो गए भगवान। बाद में भगवान ने उनको कारण बताया कि मैं क्यों ओझल हुआ, क्योंकि अभी भी उनके हृदय में प्रकृति के प्रति प्रशंसा की भावना थी, यानी सत्व गुण के प्रति अभी भी आकर्षण था, इस वजह से वो भगवान का निरंतर दर्शन नहीं कर पा रहे। तो इसलिए कोई भी गुण हो, सत्व गुण हो, रजो गुण हो, तमो गुण हो, हमें इस संसार में बांधने वाला है ना। बस ये है कि ऊर्धम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, है ना, अधो गच्छन्ति स्थावसा, ऊर्ध्वम गच्छन्ति। सत्व गुण में जो है वो ऊंचे लोकों में जाते हैं, स्वर्ग लोक में जाते हैं, लेकिन वहां से भी वापस आना पड़ता है। शून्य पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, पतन तो होता ही है, वहां से निश्चित रूप से वहां से वापस आना पड़ता है। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुना, भगवान गीता में बता रहे। और लेकिन दूसरा पतन का कारण ये भी हो सकता है, देवतागण जो है वो भोग योनि है, देवता का जो शरीर है ये भोग योनि है, पशु की योनि भी भोग योनि है, लेकिन वहां पर सिर्फ इसी बात का खतरा रहता है, अपराध का खतरा रहता है, क्योंकि इस भोग योनि में ऐश्वर्य इतना है कि स्वाभाविक है कि व्यक्ति जो है वो मदोन्मत हो जाता है और मोहित हो जाता है माया के प्रभाव से। माया का प्रभाव इतना ज्यादा है वहां पर स्वर्गलोक में कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते। यहां का ऐश्वर्य तो कुछ भी नहीं है, है ना। कुंती महारानी ने सही बोला, कुंती महारानी कहती है भागवत में, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री वीर एद महाना मध पुमान नैवार्थी अभिधातुम वही त्वाम अकिंचन गोचरम। तो कुंती महारानी कह रही है जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री वीर, अच्छे कुल में जन्म होना, बहुत अधिक धन होना, विद्वत्ता होना और सौंदर्य होना, ये सब जो है बाधा है, बंधन का कारण है इस संसार में। जिसके बाद ये चार ऐश्वर्य हैं, चारों में से एक भी ऐश्वर्य है वो संसार में बन जाता है। अच्छे कुल में जन्म होता है तो अहंकार होता है, ब्राह्मण परिवार में है, यदि हम ब्राह्मण परिवार है हम क्यों टॉयलेट साफ करें, है ना, आप जानते नहीं हम शर्मा परिवार में है, वशिष्ठ गोत्र है हमारा या जो भी है, तो हम क्यों टॉयलेट साफ करें। आप हमें कह रहे हैं मंदिर ज्वाइन करके कि आप बाथरूम साफ करो, टॉयलेट साफ, ये तो शूद्रों का काम है। तो ब्राह्मण जो है उसके अंदर एक अहंकार होता है कि मैं ब्राह्मण परिवार का हूं, जन्म ऐश्वर्य बहुत अधिक धन है किसी के पास, धनी परिवार से है, बोलेगा मैंने अपने घर में झाड़ू आज तक उठाया नहीं, है ना, मैंने अपना प्लेट तक नहीं उठाया प्रसाद देने के बाद, खाने के बाद। तो यहां अगर आप मुझे बोल रहे हैं झूठे बर्तन साफ करो, टॉयलेट साफ करो बोलते हैं आप, है ना, ये हमारी तौहीन है, आप जानते नहीं हम कहां से। तो इस प्रकार का अहंकार होता है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री वीर विद्वता का अहंकार होता है, हमने बहुत क्वालिफिकेशन हासिल कर लिए हैं, हम बीटेक हैं, एमटेक हैं, आईआईटी से गोल्ड मेडलिस्ट है, पीएचडी भी कर लिया हमने, है ना, आपके हमें शास्त्र सिखा रहे, संस्कृत में भी हमने पीएचडी किया है, संस्कृत में एक आए थे हमारे ऐसे एक व्यक्ति आए थे जिन्होंने संस्कृत में किया था एमए, तो उनको जब दिखाया बोलते वो संस्कृत सिखाना चाहते थे आते ही, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो संस्कृत पहले से ही जानते हैं, भागवत के श्लोक तो हम वैसे ही समझ लेंगे। तो विद्वत्ता का अहंकार होता है लोगों में, बहुत अधिक विद्वत्ता का अहंकार होता है। इसलिए भक्तों ठाकुर ने कहा जड़ विद्या माया और वैभव है ना। सौंदर्य का अहंकार होता है, सौंदर्य का अहंकार क्या होता है, देहात्मक बुद्धि बढ़ जाती है ना। व्यक्ति जो है खुद को ही सराहना करता रहता है, अपनी ही सराहना करता रहता है, अपनी प्रशंसा करता रहता है, देहात्मक बुद्धि का हो जाता है। और ऐसे सुंदर जो व्यक्ति होता है, जो सौंदर्य होता है जिसके पास, उसके लिए स्वाभाविक हो जाता है कि वो पुरुष से या स्त्री से आकर्षित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, और प्रभावित भी करना चाहता है वो, ये भी एक है। तो इस तरह से क्या है कि ये चारों के चारों जो हैं, जिनके पास ये भौतिक गुण है, वो इस संसार में बांधने वाले हैं। ऐश्वर्य है, इस प्रकार का जन्म ऐश्वर्य, सूत्र शिविर, ये सब हमें संसार में बांधने वाले हैं, बंधन का कारण होता है। तो इसलिए इससे निकला कैसे जाए, ये प्रश्न उठता है। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अच्छे कुल में अगर जन्म लिया है तो इस बात का अहंकार ना हो कि हम ब्राह्मण परिवार के, हमें वैष्णव बनना है ना। तो ब्राह्मण तो कुछ भी नहीं है, ब्राह्मण तो केवल शुरुआत है, सत्व गुण में है, हमको वैष्णव बनना है। भौतिक विद्या, भौतिक ज्ञान जो है संसार में बांधने वाले हैं, जड़ विद्या संसार में बांधने वाले हैं, आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान, आप तो यही नहीं जानते कि आप शरीर हो, अशरीर नहीं हो, आप अपने आप को शरीर समझ बैठे हैं। कितनी बड़ी आप विद्या है आप में, असली ज्ञान तो भगवदगीता में है। भगवदगीता का ज्ञान प्रारंभ होता है कि आप शरीर नहीं आत्मा है, वहां से ज्ञान शुरू होता है। लोग जानते नहीं है कि वो कौन है। अभी एक हम लोग कॉलेज में प्रोग्राम के लिए गए थे, वहां हमने सेमिनार दिया था पावर ऑफ हैबिट्स के। तो आखिर में किसी ने प्रश्न पूछा, एक प्रोफेसर ने प्रश्न पूछा था कि प्रश्न बड़ा अच्छा था उनका। उन्होंने कहा कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा इसके बाद, शरीर छोड़ने के बाद, है ना। तो हमने विद्यार्थियों से पूछा, उनका जो प्रश्न था हमने कहा देखिए आपसे अगर पूछा जाए कि आप कौन हैं और आप ना बता पाए कि आप कौन हैं, इसका मतलब क्या है बताइए, इसका क्या अर्थ है। अगर आपसे मैं पूछूं आप कौन हैं, तो मैं नहीं जानता मैं कौन, इसका मतलब क्या है, या तो आप पागल हैं या याददाश्त गवा बैठे हैं या खो बैठे याददाश्त। वो हो मैं जानता नहीं मैं कहां से आया, जैसे मूवीज में देखते हैं है ना, कोई याददाश्त खो बैठता है, वो हो मैं कहां हूं, कहां से आया हूं, ये आप वहां से आ गया हॉस्पिटल में, आप कौन है ना। तो इसी तरह से बिल्कुल कि मैं जानता नहीं मैं कौन हूं, यानी कि आप पागल हो या तो अपने आप को कुछ और समझ बैठे हो आप। तो इस प्रकार जो है व्यक्ति जो है वो अज्ञानता के, जिसको ज्ञान समझता है, विद्या को विद्या समझता है, और इसी संसार में बंधा रहता है। सौंदर्य में आप देखते हैं, सौंदर्य जो है किसी को मिस्टर यूनिवर्स मिल रहा है, मिस यूनिवर्स का अवार्ड मिल रहा है, उसी में फंसे हुए हैं। और कितने समय तक आप मिस यूनिवर्स या मिस्टर यूनिवर्स रहेंगे, एक साल दो साल, अगले साल कोई और आ जाएगा है ना, चेहरे में आपकी झुर्रियां लग जाएंगी, बुढ़ापा आ जाएगा, फिर कहां से मिस्टर यूनिवर्स, कोई पूछेगा भी नहीं आपको, थूकेंगे आपके ऊपर है ना, कोई आपका फोटो तक नहीं देखना चाहेगा। तो मल मूत्र से भरा हुआ ये शरीर जो है, इसमें क्या सौंदर्य है। इसलिए ये मोह है, ये माया है, इसी को माया कहते हैं। माया का मतलब है जो है नहीं उसको मान लिया है, सौंदर्य है नहीं, मान लियो कितना सुंदर ये दृश्य है, वाह वाह वाह, लेकिन उसके पीछे असलियत क्या है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। चेहरे को अगर, चेहरे को जो मेन जो स्किन लेयर है उसको हटा दिया जाए तो देखने लायक नहीं है हम लोग। या सुबह नहाए बगैर हम पहुंच जाए, ऑफिस पहुंच जाए या मंदिर आ जाए बिना नहाए, दांत भी ना साफ किया हो, चेहरा भी ना धोया हो, तो हम देखने लायक नहीं है, है ना। इस शरीर को सजाने की आवश्यकता पड़ती है, यहां तक कि जो भक्त भी है उनको हेडशेव करना पड़ता है, जो पुरुष भक्त है उनको हेडशेव करना पड़ता है। तो बहुत कुछ इसमें, बहुत कुछ आवश्यकता पड़ती है श्रृंगार की। प्रातः काल में आप उठते हैं, दांत साफ करते हैं, नहाते हैं, है ना, कितना देखिए शरीर के लिए कितना कुछ मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है। फिर उसके बाद नहाने के बाद जिसके बाद बाल है वो बाल भी संवारते हैं, अपना बिना बाल संवारे आप जा नहीं सकते हैं, बाल भी संवारना पड़ता है आपको। और जो माता है उनके तो बहुत सारे मेकअप के आइटम्स होते हैं, कितनी मेहनत करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमें अपने आप को समाज में प्रस्तुत करने के लिए, है ना। देखिए कितनी बड़ी समस्या है, अपने आप को दिखाए यानी देख सके, हम अपने आप को भी देख सके और दूसरे भी हमें देख सके, उसके लिए कितनी सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, कितना बड़ा आडंबर रचना पड़ता है, कितना सारा जो है व्यवस्था करनी पड़ती है। नाना प्रकार के वस्त्र हैं, दुकानों में जाइए, मॉल्स में जाइए, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाइए, इतने सारे वस्त्र हैं, ऐसे पहनिए अच्छे लगेंगे आप, ऐसे पहनिए अच्छे लगेंगे आप, ऐसा मेकअप कर लीजिए, ऐसा हेयर स्टाइल कर लीजिए, है ना, चेहरे को ऐसे चमकाइए, वैसे चमकाइए, वैसे कि जूतों में भी नाना प्रकार के जूते हैं, महंगे से महंगे जूते हैं, है ना, जब पांव के नीचे 10-10, 20-20 हजार रुपए के जूते लोगों ने पहने हुए, वो पांव के नीचे है, है ना, पांव सबसे निकृष्ट स्थान है, और वहां उसको सजाने के लिए भी देखिए 10,000-20,000 के लोग जूते खरीद रहे हैं, लोग सब लोग जूतों की तरफ नजर रहती है, कोई देखता ही नहीं चेहरे की तरफ, जूतों से आकर्षण हो जाता है, माया कितनी प्रबल है इसका तो हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन जब भक्त समाज में जब आते हैं तो फिर इन बातों का एहसास दिलाया जाता है श्रीमद् भागवत के आधार पर। यहां पर देखिए इंद्र की समस्या क्या है, इंद्र बैठे हुए हैं सिंहासन में, राज सिंहासन है, स्वर्ग लोक के राजा हैं, इतने बड़े बड़े देवी देवता भी इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनके गंधर्व है, किन्नर है, चानर है, सब यहां बताया हुआ है कौन कौन वहां मौजूद थे, हर प्रकार के देवी देवतागण वहां पर है, इंद्र का राज्य है, कितना ऐश्वर्य है, अमरावती में इंद्र रहते हैं, बहुत ऐश्वर्य है, नंदन कानन में जाए वहां पर अप्सराएं हैं और किसी भी चीज की कमी नहीं है, आप जो भी इच्छा करेंगे वहां पर स्वर्ण लोक में आपको तुरंत मिल जाएगा, कोई भी भौतिक सुविधा आपको चाहिए उसके लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं, केवल इच्छा करने मात्र से मिल जाता है वहां पर, सुरभि गाय है, दूध की कोई कमी नहीं है, या तो गाय नहीं है वहां पर, दूध की कोई कमी नहीं है, जितना दूध चाहिए एक ही गाय से मिल जाएगा आपको, रसोई की आवश्यकता नहीं है वहां पर, जानते हैं आपको रसोई नहीं है स्वर्ग लोक में, कोई किचन नहीं होता वहां पर, वहां तो आप जो इच्छा करो वही व्यंजन आपको तैयार मिल जाएगा, और उसके बाद खाने के बाद कुछ भी आप पाएंगे, प्रसाद पाएंगे तो फिर तुरंत जो है वो प्रसाद जो है खून में बदल जाता है, मल मूत्र नहीं बनता है शरीर में, फाइनर एलिमेंट से बना है वो शरीर, तो स्वाभाविक है कि उससे आसक्ति होगी, यहां पर जो कुछ ना होने पर भी आसक्ति हो रही है संसार में, जैसे हमने बताया वर्णन किया, वहां सब कुछ है तो कितनी आसक्ति होगी वहां पर, जय श्री श्री राधिका रमण की, जगन्नाथ बलि सुभद्रा महारानी की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौन था की जय, तो कितना ऐश्वर्य है वहां पर, कितनी सुख सुविधा है, लेकिन क्या है कि फिर भी जो है वहां पर व्यक्ति सुखी नहीं है, लोग दुखी है, भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रतिचेतसाम व्यवस्यात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, बहुत आसक्ति है भोग और ऐश्वर्य में जो है लगता है यही संसार का असली सुख है, भगवान कैसे याद आएंगे बताइए, वो तो अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं, गंधर्वों से संगीत सुन रहे हैं, वहां पर पहुंच गए, जब पहुंचे बृहस्पति पहुंचे देवताओं के गुरु, देवताओं के गुरु जब पहुंचे बृहस्पति तो वो आसन में बैठे और इतने ज्यादा मोहित थे उस समय नृत्य देखने में, माया के वशीभूत थे और वो भूल ही गए कि उनके गुरु को आदर भी देना है, गुरु को आसन देना है, गुरु का स्वागत करना है, कुछ भी नहीं किया इंद्र ने, बृहस्पति ने देखा कि ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा, बृहस्पति चाहे तो उनको शाप दे सकते थे, जाओ तुम सुअर बन जाओ, सुअर बन भी जाते इंद्र, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे एक और दूसरे घटना में तो इंद्र को शाप भी मिला था जिसमें इंद्र को सुअर बनना पड़ा था, है ना, क्योंकि उस योनि में भूल जाते हैं, स्वाभाविक है कि माया जो है वशीभूत कर लेती, तो बृहस्पति जो है वो बहुत दुखी होकर नाराज होकर वहां से चले गए, लेकिन एक बात है कि इंद्र जो है तुरंत समझ गए कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ा अपराध हुआ है कि उन्होंने अपने गुरु का स्वागत नहीं किया और गुरु को आसन नहीं दिया और गुरु को प्रणाम नहीं किया, तो इसलिए इंद्र जो है बहुत ज्यादा दुखी हुए, बहुत पश्चाताप करने के, ये मैंने क्या किया, इससे तो अच्छा है कि मैं किसी और योनि में होता, इतना ऐश्वर्य यहां पर है कि मैं भूल ही गया कि सामने मेरे गुरु आ रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है, इस प्रकार हो जाता है, और इंद्र के साथ तो कई बार हो चुका है ना, ब्रह्मा जी देखा उन्होंने कि यहां तक कि जो है इंद्र ने देखा कि ब्रज में सब लोग जो है कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, यानी कृष्ण कृष्ण की सेवा में लगे हैं और कृष्ण की बात सुन रहे हैं, गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, है ना, तो इंद्र जो है बहुत क्रोधित हुए कि ये जो ब्रजवासी हैं उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, है ना, तो इंद्र ने क्या किया, फिर बरसात कर दी वहां पर लगातार 7 दिन 7 रात जो है बरसात कर दी ब्रज में, ब्रजवासियों को कितना कष्ट हुआ, भगवान ने उनकी रक्षा की। इंद्र को तो कुछ कहा ही नहीं भगवान ने, इंद्र की तरफ देखा भी नहीं, उन्होंने सिर्फ गिरिराज जी को उठा दिया, उसी में हो गया सब कुछ। तो भगवान जो है वो देखते हैं जब भक्तों को अहंकार हो जाता है, भक्तों को माया वशीभूत कर लेती है, तो भगवान जो है फिर उस अहंकार को नष्ट करते हैं। इसे नारद भक्ति सूत्र में लिखा हुआ है, नारद जी बता रहे हैं कि भगवान सब कुछ स्वीकार कर लेंगे, है ना, लेकिन अहंकार जो है उनको पसंद नहीं, अहंकार जो है भक्ति को खा जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, तृणादपि सुने चेन तरोर अपि सही सुना, अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदारे, कि मान की ना इच्छा रखते हुए मान देना है, ये बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप मान तभी देते हैं, वो हमें जब मान मिलेगा जब हमें आप आसन देंगे, हमारा गुणगान करें, तब हम आपका गुणगान करेंगे, तो उसमें एक स्वार्थ छुपा हुआ है, निस्वार्थ भावना सा नहीं है। तो मान देना जो है ये बहुत बड़ी योग्यता है, और बिना मान की इच्छा रखे हुए, तो ये वैष्णव में पाया जाता है। जो वैष्णव होते हैं भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं, गुरु की सेवा में समर्पित होते हैं, उनमें ये गुण आ जाते हैं, और ये वैष्णव बनने का एक बहुत बड़ा लक्षण है। कोई अगर वैष्णव बनना चाहता है तो उसको शिक्षाष्टकम के तीसरे श्लोक का पालन करना होगा, नहीं तो वैष्णव बनना असंभव है, भगवत प्रेम तो दूर की बात है। इसलिए कई जैसे नौसिखिया भक्त हैं प्राकृत अवस्था में, वो चाहते हैं कि हम लोग भजन करेंगे और हम लोग ब्रज में रहेंगे, अब हम राग मार्ग की साधना कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है उनमें ये शिक्षाश्रम के तीसरे श्लोक का जो गुण है वो नहीं पाया जाता, उनको अहंकार हो जाता है, भक्ति का अहंकार हो जाता है। ये देखिए कितनी सूक्ष्म बात है, उनका अहंकार हो जाता है कि हम राग मार्ग की साधना कर रहे हैं, और दस लोगों को बताते भी हैं कि हम राग मार्ग की साधना कर रहे हैं, आप भी राग मार्ग की साधना करिए, यानी राग मार्ग की साधना करने वाला व्यक्ति बता रहा है कि मैं राग मार्ग की साधना कर रहा हूं, यानी स्वाभाविक नहीं है उसके लिए, उसको ये बताना पड़ रहा है सबको। बताइए कितना बड़ा दुख है, देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, वैसा समाज में भी ऐसा पाया जा रहा है, जो उस स्थिति में है नहीं लेकिन उस स्थिति में होने की नकल करते हैं और उस तरह की साधना करने की नकल करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी माया है। इसलिए ठाकुर भक्ति ने भजन रहस्य बताया, साधन साध्य भ्रम, यानी कि साधन साध्य भ्रम का मतलब यह है कि साधना का नहीं पता है, साध्य का पता है साधना का नहीं पता है, साध्य का पता है साधना का नहीं पता है, तो ये भी भ्रम है, ये भी एक माया है, ये भी एक मोह है। तो भक्त जो है साधक नहीं पहचान पाता है कि उसको कौन सी साधना करनी चाहिए, और अपने आप को वो किसी लेवल पर मान लेता, हाँ मैं शायद निष्ठा के लेवल पर हूं, खुद ही उसको अपने आप जो है भ्रम हो जाता है कि वो निष्ठा के लेवल पर। इसलिए हमारे पूर्ववर्ती आचार्य जो है वो बता रहे हैं, हमारे पोल खोल रहे हैं, जैसे उन्होंने ग्रंथ लिखे, विश्वनाथ सिंह ठाकुर ने माधुरी कादंबरी लिखा, जिसमें उन्होंने हमारी अपनी पहचान कराई है कि आप वास्तव में उस लेवल में नहीं हो, विश्वनाथ सिंह ठाकुर बता रहे हैं। भागवतम क्लास में नींद आ रही है, लय जिसको कहते हैं, और हरि नाम ले रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, बीच में बातें कर रहे हैं, विक्षेप इसको कहते हैं, लय विक्षेप, ये अलग अलग प्रकार के अनर्थ बताए विश्वनाथ सिंह ठाकुर ने। और इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ये अनर्थ अगर है, विश्वनाथ सिंह ठाकुर कहते हैं अगर ये अनर्थ है तो हम निष्ठा के सर पर नहीं, और निष्ठा के सर पर नहीं है तो फिर राग मार्ग की साधना क्यों करना चाह रहे हैं आप। इसलिए चैतन्य चरितामृत में भी अगर आप देखेंगे, जब रघुनाथ दास गोस्वामी को शिक्षा दी महाप्रभु ने, तो महाप्रभु ने 7 कदम बताए भगवत प्रेम के लिए, 7 स्टेप्स बताए, 7 स्टेप्स बताए चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को, ग्रामे कथा न सुनी वे, ग्रामे वार्ता न कही वे, यहां से शुरू किया उन्होंने। फिर उन्होंने जो है बीच में बताया कि निष्ठा का स्तर बताया, तृणाद अपी सुने चेन तरोर अपी सही सुना, अमानी ना मान देने कीर्तनीय सदारे। फिर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कोई ये योग्यता प्राप्त कर लेगा उसके बाद फिर उसको भगवत प्रेम प्राप्त होगा, तो ये गुण है ही नहीं, है ना, ये गुण नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है बात। इसलिए जो स्वर्ण लोक के जो देवी देवता गण हैं वो शुद्ध भक्त क्यों नहीं है, क्योंकि उनमें ये गुण नहीं पाए जाते, इसलिए वो प्राकृत भक्त कहलाते हैं, सकाम भक्त कहलाते हैं। देवतागण भी भक्त हैं लेकिन प्राकृत भक्त कहलाते हैं। इसलिए हम देवतागणों को सीधा उनकी पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि अभी वो शुद्ध भक्त नहीं है, उनके माध्यम से हमें भगवत प्रेम नहीं मिलेगा, प्राकृत भक्तों के माध्यम से भगवत प्रेम नहीं मिलता। लेकिन अगर प्राकृत भक्त आपको शुद्ध भक्त से मिला दे तब मिल सकता है ना। तो इसलिए हमारे कई भक्त हैं जो प्राकृत अवस्था में हो सकते हैं, लेकिन वो गुरु से मिलाते हैं, प्रभुपाद से मिलाते हैं, इसलिए उनका प्रचार सफल होता है। तो इंद्र जो है वो स्वागत नहीं कर पाए, ठीक से स्वागत नहीं कर पाए, और जो है वो भ्रमित हो गए कि उनके गुरु आए लेकिन उनका स्वागत नहीं कर पाए, उनको आदर नहीं दे पाए, उनका आसन नहीं दे पाए। इसी तरह से हम देखते हैं कि रोमहर्षण सूत जब बलराम जी आए सभा में, ऋषि मुनियों ने उनको जो है प्यास आसन प्रदान किया था, और जो बलराम जी सामने से आए तो बलराम जी को देखकर वो खड़े नहीं हुए, उनको प्रणाम नहीं किया, उनको आदर नहीं दिया। प्रभुपाद जी बता रहे हैं आगे तात्पर्य में कि सामान्यतः प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, देश का राजा हो, या आप व्यास आसन में बैठे हो, तो उस समय उठ खड़ा होना कोई आवश्यक नहीं है, खड़ा होना आवश्यक नहीं है अगर आप व्यास आसन में बैठे हैं। लेकिन अगर सामने गुरु है तो आपको आदर देना होगा, यानी कम से कम आदर देने की भावना व्यक्त करनी होगी आपको जब गुरु आए आपके सामने, है ना। गुरु ये नहीं कहेंगे आप खड़े हो जाओ दंडवत करो मुझे, गुरु जी यही कहेंगे नहीं नहीं आप क्लास दो, आप प्रवचन जारी रखो, लेकिन आदर देने की भावना में व्यक्त करनी है व्यास आसन से जब गुरु आते हैं, है ना। और इसी तरह से जब राधिका रमण जी का दर्शन करते हैं तो हमें फिर आदर देने की भावना व्यक्त करनी है उनका जय बोलकर। तो इस प्रकार से ये आदर की भावना जो है प्रकट करते हैं उस स्थिति में भी होकर, जब विशेष रूप से गुरु सामने आए, भगवान सामने आए, जैसे बलराम जी सामने आ गए, जिनका वर्णन आप कर रहे हो, जिनका आप गुणगान कर रहे हो कथा के माध्यम से, वही अगर सामने आ गए तो फिर गुणगान किसका कर रहे हो आप समझ रहे हैं, आप गुणगान कर रहे हैं बलराम जी का यानी भागवत का, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, और सामने बलराम जी आ गए आप देख ही नहीं रहे उनकी तरफ, तो इसका मतलब आपका गुणगान तो निरर्थक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि देवानंद पंडित जो है जब वो कोलद्वीप में थे और कोलद्वीप में कथा जब कर रहे थे, और कुलिया ग्राम से ना जाना चाहता था उस समय, तो देवानंद पंडित जो है भागवत के ऊपर क्या करते थे, भागवत के ऊपर कथा करते थे, लेकिन मायावाद भाष्य देते थे, भक्ति का कोई स्मरण नहीं था, शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं था उसमें। तो चैतन्य महाप्रभु इससे पहले एक बार आए थे, जब वो संन्यास लेने से पहले जब एक बार कुलिया ग्राम में आए थे तो उन्होंने देखा देवानंद पंडित कथा कर रहे हैं, और बाहर से उन्होंने सुना भागवत के श्लोकों को सुना, फिर उसका जब उन्होंने व्याख्या सुनी तो चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हुए देवानंद पंडित के ऊपर, और उन्होंने कहा कि ऐसी व्याख्या बंद करो, आप कैसी व्याख्या कर रहे हैं। तो देवानंद पंडित ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया चैतन्य महाप्रभु, और हृदय में कोई परिवर्तन भी नहीं आया, है ना। बाद में फिर श्रीवास पंडित भी आए, श्रीवास पंडित जब आए तो उन्होंने भी जब भागवत का श्लोक सुना तो वो भीतर आ गए, और उनके शरीर में कंपन और भाव के लक्षण प्रकट हुए। तो जब भाव के लक्षण प्रकट हुए तो क्या हुआ, जो वहां पर एक जो बैठे हुए जो श्रोतागण थे उन्होंने श्रीवास पंडित को उठा के जो है बाहर कर दिया, और देवानंद पंडित क्योंकि व्यास आसन पर बैठे थे उनकी जिम्मेदारी बनती थी गुरु होने के नाते, उनके गुरु होने के नाते कि उन्होंने शिष्यों को रोकते कि ऐसा मत करो ये अपराध है, लेकिन देवानंद पंडित ने कुछ नहीं किया, यानी उस अपराध में वो भी शामिल हो गए, उनको लग गया अपराध, है ना। तो इस तरह से कई बार ऐसे जो गुरु होते हैं जो जानते नहीं सिद्धांत को वो अपराध कर बैठते हैं। बाद में फिर श्रीवास पंडित जो बाद में देवानंद पंडित ने वक्रेश्वर पंडित की सेवा की और वक्रेश्वर पंडित की रक्षा भी की उन्होंने भीड़ से रथयात्रा के समय, तो इस तरह से वक्रेश्वर पंडित की सेवा करने मात्र से उनका हृदय पिघल गया और वो समझ गया कि उनकी गलती क्या है, फिर क्षमा मांगी उन्होंने श्रीवास पंडित से। तो कहने का अर्थ यह है कि जब हम माया के वशीभूत हो जाते हैं, उनको भी बहुत ज्ञान था, भागवत का ज्ञान था, लेकिन ज्ञान के रूप में ज्ञान था, भागवत को भक्ति के रूप में नहीं समझ पा रहे थे, उन्होंने उसको एक जड़ विद्या की तरह जो है सारे श्लोक याद किए हुए हैं और अपना ही वो भाष्य देते थे, अपनी ही व्याख्या देते थे। तो इस तरह से देवानंद पंडित अपराध से बचे जब उन्होंने बाद में क्षमा मांगी, और इसी तरह से हम देखते हैं। लेकिन देखिए भगवान का, देखिए भगवान की महिमा देखिए आप, द्वारकाधीश जब बैठे हैं वहां पे, द्वारका में बैठे हैं, राज सिंहासन में बैठे हैं, जैसे ही सुदामा जी का पता चला कि सुदामा जी आ रहे हैं, भगवान सिंहासन से खड़े हो गए और सुदामा जी की उन्होंने सेवा की, उनकी चरण सेवा की, और अपने अश्रु धारा से जो है उन्होंने सुदामा जी के चरण धोए। तो ये देखिए ये भगवान है, भगवान अपने आचरण से दिखाते हैं कि किस तरह से आदर देना चाहिए। जब कोई वैष्णव आए, जब ब्राह्मण आए या भवान आए, और फिर हम देखते हैं इसी तरह से जब नारद जी भी जब आए, तो नारद जी भी जो आए द्वारका आए, अलग अलग महलों से गुजर रहे थे, जब द्वारकाधीश के सामने आए तो भगवान ने क्या किया, उनका हृदय से स्वागत किया, नारद जी की खूब सेवा की भगवान। तो ये भगवान स्वयं दिखा रहे हैं, यद यद आचरिति श्रेष्ठ तत्त एवेतरो जना, श्रेष्ठ पुरुष जैसा करते हैं सामान्य लोग वैसा ही करते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इंद्र जो है वो भ्रमित थे, माया के वशीभूत थे, भूल गए कि बृहस्पति उनके गुरु हैं, उनका स्वागत भी करना चाहिए, है ना। तो इसी तरह से बहुत हमें सचेत रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। कभी कोई भक्त सामने आते हैं और उनको हम हरे कृष्णा देखकर नहीं कहते हैं, या कम से कम मन से आदर की भावना नहीं प्रकट करते हैं, है ना। ऐसे श्रील रूप गोस्वामी क्या बता रहे हैं, कृष्णेति यस्तम गिरितम, कृष्णेस्तम क्या, कृष्णेस्ति कृष्णेति यस गिरितम मनसा द्रियत दीक्षास्ति चेत प्रणते भी भजंतम ईशम शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम अन्य निंदादि शून्यम हृदय इप्सिता संगम लभ्य, है ना। तो इसमें क्या बता रहे हैं, कृष्णेति यस गिरितम मनसा द्रियत, यानी कि जो कृष्ण का नाम ले रहा है अपने कंठ से उसको मन से आदर देना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, ये नहीं कि अब सामने वही हरे कृष्णा बोल रहा है, अगर वो जूनियर है तो उसको हम देख भी नहीं रहे, उसको हरे कृष्णा कहने का भी हमें समय नहीं है कि हम बहुत बिजी हैं, क्योंकि एक भी भक्त का हमने अपराध कर दिया, एक भी भक्त हमसे दुखी हो गया मन से भी, तो इसका मतलब क्या है, भगवत प्रेम से हम वंचित हो जाए। भगवत प्रेम इतना आसान नहीं है, कम से कम हमारी अपनी भावना सही होनी चाहिए। हो सकता है कि वो बुरा मान जाए, लेकिन अगर हमारी भावना सही है तो वो भी ठीक होगा। लेकिन वैष्णव अपराध के बारे में बताया जाता है, श्री रूप गोस्वामी जब लीला स्मरण कर रहे थे, लीला स्मरण क्या हो रहा था उनको, रूप गोस्वामी लीला स्फूर्ति हो रही थी उनको, जब वो नाम ले रहे थे तो देखा कि राधा रानी जो है वो फूल चुनना चाह रही है टहनी से, और कृष्ण ऊपर बैठे हुए छुपके, है ना। तो राधा रानी के लिए उन्होंने जो है टहनी को नीचा कर दिया, और जैसी राधा रानी ने टहनी को पकड़ा ऐसे, तो कृष्ण ने टहनी को छोड़ दिया और राधा रानी जो है टहनी में लटक गई, है ना। तो ये देखकर रूप गोस्वामी एक तरह से हंसने लगे, और जब हंसने लगे तो सामने एक वैष्णव आ रहे, वहां से निकल रहे थे, उनका शरीर बड़ा क्रूर था, है ना। तो उनको लगा कि मुझे देखकर हंस रहे। अब अरे रूप गोस्वामी का काम, वहां पे कोई दुर्भावना नहीं थी, वो नहीं चाहते थे ऐसे कोई हो, ऐसी कोई बात हो, ना उन्होंने आज तक कभी किसी वैष्णव को दुखी किया था, ना उनका ऐसा कोई विचार था, लेकिन फिर भी रूप गोस्वामी की लीला स्फूर्ति जो है बंद हो गई, लीला स्मरण नहीं कर पा रहे थे। सनातन गोस्वामी ने पूछा कि क्यों दुखी आप, तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो गया है, मुझे लगता है, सनातन गोस्वामी ने कहा ऐसा लगता है कि कोई वैष्णव आपसे दुखी है, हमें वृंदावन के जितने भी वैष्णव हैं सबको आमंत्रित करना होगा भगवत प्रसाद, और जो नहीं आएगा समझ जाइए वो आपसे दुखी। तो इस तरह से देखिए बहुत मुश्किल हो जाता है इस वैष्णव समाज में, और किसी बात का खतरा नहीं है, यही खतरा है सिर्फ, और कोई भी खतरा नहीं है हमारी संस्था में वैष्णव समाज में, एक यही खतरा है कि हम किसी वैष्णव को दुखी करते हैं, हमारी भक्ति जो है वो शीतल पड़ जाती है, ये समस्या है। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, वैष्णव को हम लोग ठीक रूप से आदर दें, और वैष्णव को नहीं, जो भी अतिथि भक्त भी आ रहे हैं मंदिर में, अतिथि भी आ रहे हैं, हमें सबको आदर देना चाहिए। इसलिए भागवत बता रहा है कि न तद भक्तेषु अन्येषु सब भक्ता प्राकृत स्मता, प्राकृत भक्त कौन है, जो ये नहीं जानता है कि भक्तों को कैसे आदर देना चाहिए, और जो अतिथि आ रहे हैं दर्शन करने के लिए उनको कैसे आदर करना चाहिए, उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो प्राकृत भक्त जानता ही नहीं। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के कर रहा, वो जानता ही नहीं, उसके अंदर एक भावना ही नहीं है, वो चेतना ही नहीं है कि वो किसी को आदर दे, उसका तो एक ही मतलब है कि वो तो भगवान का दर्शन करना चाहता है बस। श्रद्धा उसकी है, अर्चायाम हे वहरे श्रद्धा यहते पूजाम श्रद्धा यहते, है ना, उसके अर्चना में श्रद्धा है बहुत, लेकिन जब भक्त आते हैं और अतिथि आते हैं तो उनके प्रति ध्यान नहीं रहता। तो इसलिए प्राकृत अवस्था में सबसे अधिक अपराध होते हैं, सबसे अधिक जो अपराध होते हैं वो प्राकृत अवस्था में होते हैं, और ये जो अवस्था है उसमें संरक्षण की आवश्यकता है, ऐसे भक्तों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ऐसे भक्तों को सुरक्षा की आवश्यकता है, ऐसे भक्तों के प्रति हमारी जो सेवा की भावना की आवश्यकता है। इसलिए जो वरिष्ठ भक्त है उनका सबसे पहला कर्तव्य है जो नए भक्त आए उनका ध्यान रखें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं तो जो कनिष्ठ भक्त है वो तो भटक जाएंगे, उनको पता ही नहीं है क्या क्या सही है क्या गलत है। इसलिए जब उन्नत वैष्णव उनको ध्यान नहीं देंगे तो वो हमेशा के लिए कनिष्ठ ही रहेंगे, वो आगे बढ़ ही नहीं सकते, वो अपने प्रयास से तो कभी नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम बातों का ध्यान रखें। जैसे यहां पर बहुत सुंदर ये प्रसंग आया है जिसमें बता रहे हैं, और प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि अमेरिका में ये हालत है। अमेरिका में भी प्रभुपाद जी, देखिए प्रभुपाद कितना अच्छा रिलेट करते हैं। प्रभुपाद जी ने यहां पर अपनी तुलना बृहस्पति से की है। प्रभुपाद जी से पूछा कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति बनना चाहेंगे, प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, मैं राष्ट्रपति का गुरु बनना चाहूंगा ताकि मैं उसको मार्गदर्शन देना चाहूं, मार्गदर्शन दे सकूं कि अमेरिका जो है कैसे चले, देश कैसे चले। तो यहां पर बिल्कुल प्रभुपाद जी देखिए बृहस्पति से अपना अपनी तुलना कर रहे हैं कि जिस तरह से बृहस्पति जो है वो इंद्र के गुरु हैं, उसी तरह से प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रपति का गुरु बन सकता हूं, यानी अमेरिका को मैं गाइडेंस दे सकता हूं। और प्रभुपाद यहां बता रहे हैं कि अमेरिका जो है स्वर्गलोक से कम नहीं है, वहां का ऐश्वर्य इतना ऐश्वर्य है वहां पर, खैर स्वर्गलोक जैसा तो ऐश्वर्य नहीं है क्योंकि देवतागण तो थूकते भी नहीं है यहां पर, यहां का ऐश्वर्य देख कर दो, है ना, यहां तो देखते भी नहीं है वो। लेकिन फिर भी मान लिया जाए कि स्वर्ग जैसा ऐश्वर्य है अमेरिका में, तो वहां पे लोग वशीभूत हो जाते हैं माया के और उनको पता ही नहीं कि आध्यात्मिकता क्या है। प्रभुपाद जी जैसे वैष्णव ना गए होते तो असंभव है अमेरिकन के लिए कृष्ण भक्ति को अपनाना, ये इम्पॉसिबल टास्क है। प्रभुपाद जी ने जो किया है यह असंभव कार्य है, क्योंकि इतने ऐश्वर्य में भी प्रभुपाद जी ने जो है उनको वहां भक्ति में लगाया, उनको निकाला उस ऐश्वर्य से बाहर, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ देखिए अमेरिका में प्रचार करना कितना मुश्किल हो रहा है, भक्त नहीं बन पा रहे वहां पर, क्यों नहीं बन पा रहे, क्योंकि इतना ऐश्वर्य है, इतना ऑपुलेंस है। अरे आप माया के ऐश्वर्य को आप देख लेंगे तो आपको भक्ति याद ही नहीं, भगवान का दर्शन क्यों करना चाहेंगे आपको लेकर, संसार में इतना सुख है ना, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं है, हर प्रकार की सुविधा है, मेरा स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक है। अमेरिकन देखने में बड़े हेल्दी होते हैं, टॉल होते हैं एकदम, लेकिन बीमारियां भी बहुत लग रही है अमेरिका में, अमेरिका में भी इंडिया से ज्यादा बीमार लोग थे अमेरिका में, लेकिन फिर भी ऐश्वर्य उनके पास इतना है कि वो बीमारी को भी भूल जाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी जैसे जो वैष्णव है जब जाते हैं ऐसे देशों में तब जाके जो है उद्धार हो सकता, अन्यथा जो संभव ही नहीं है कि ये लोग भक्ति में लग पाए। तो इसलिए विशेष रूप से जिनके पास ऐश्वर्य है उनको बहुत सावधान रहना चाहिए भक्ति मार्ग, जिन जो अच्छे कुल में जन्म लिया जिन्होंने लिया है और जिनके पास बहुत अधिक धन है, बहुत विद्वत्ता है, बहुत सौंदर्य है, उनको भक्ति में बहुत गंभीरता से चलना होगा। कुछ भक्त जिनको गाने का क्या कहते हैं गा पाते हैं अच्छी तरह से, संगीत में बड़ा शौक है, या कला कोई भी है, या बहुत अच्छा प्रवचन दे पाते हैं, है ना, टैलेंटेड जितने भी होते हैं भक्त वो सब खतरे में है। जितने भी टैलेंटेड भक्त हैं वो सब खतरे में है। जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है, जो गा नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, जिसके पास कोई ऐश्वर्य नहीं है, जो हो सकता है चंडाल परिवार में जन्म लिया हो, है ना, और जिसके पास सुंदरता नहीं, देखने में बड़ा कुरूप है, उसके लिए भक्ति करना सबसे आसान है, सबसे आसान है उसके। इसलिए नारद जी ने जो है नलकुंवर मणिगिरी को देखकर शाप दे दिया, उन्होंने कहा ये शाप ही ठीक है इनके लिए कि जब पेड़ बनेंगे 36,000 साल रहेंगे नंद महाराज के घर में तब अकल आएगी इनको, और पेड़ की योनि में भी याद करेंगे कि उन्होंने क्या गलती की है, कि उन्होंने मंदाकिनी नदी में गंगा जी में जो है उसने उन्होंने क्या किया है, नग्न अप्सराओं के साथ जो है वहां पर देवताओं की जो वहां पर देवताओं की जो बेटियां थी या जो अप्सराएं थी, नग्न अप्सराएं जो थी उनके साथ जो है व्यभिचार किया, और वस्त्रहीन होकर नारद जी ने जो है दया दिखाकर उनके ऊपर जो है क्या किया, उनको शाप दे दिया, है ना। तो इसी तरह से जो वैष्णव है इस प्रकार से कृपा करते हैं, जब नारद जी जैसे वैष्णव कृपा करते हैं तो इसी तरह के दंड देते हैं, है ना। तो कई बार जो है भक्ति में दंड देना आवश्यक होता है, है ना, इसलिए भगवान दंड देते हैं या भक्त दंड देते हैं। इसे बता रहे थे मैं सुंदरपुर, जिस तरह से भरत महाराज जो है उनको हिरण बनना पड़ा, हिरण से आसक्त हो गए, तो इन्होंने बताया कि विश्वनाथ जी ठाकुर ने कहा कि वो सुप्रारब्ध थे, सुप्रारब्ध का मतलब यह है कि ये घटना इसलिए हुई क्योंकि इस घटना के बाद जो है भरत महाराज जो है बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे भगवत भक्ति में, उनको यह एहसास हो जाएगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, दोबारा फिर वो गलती नहीं करेंगे। तो भगवान भी कई बार ऐसी व्यवस्था करते हैं, भक्त को ऐसी परिस्थिति में डालते हैं, उस परिस्थिति में होता है कई बार ऐसा कि वो भक्त गलती करता है या कोई नियम तोड़ता है जिससे उसका पतन होता है, लेकिन फिर वो एहसास करता है कि मैंने इतनी बड़ी गलती की है, दोबारा कभी फिर गलती नहीं करता। तो कई बार क्या होता है कि फेमिलैरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, ये भी एक कहावत है अंग्रेजी में। कई बार हम भक्ति में लगे रहते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, चार नियम भी बहुत सालों से फॉलो कर रहे हैं, उसके कारण भी भक्ति में भक्त जो है गंभीर नहीं हो पाता है कि उसको लग रहा है सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो इस प्रकार की कष्ट की परिस्थिति में भगवान डालते हैं, जहां हो सकता है संभावना रहती है ऐसी कष्ट की परिस्थिति में, या ऐसे माया के वशीभूत डाल दिया जाता है, या ऐसे आश्रय में उसको डाला जाता है भक्त को, जहां कहीं ना कहीं वो गलती कर बैठता है और उस गलती से वो बहुत बड़ी शिक्षा लेता है, फिर वो दोबारा गलती नहीं करता। तो इस तरह से भगवान जो है कई तरीके से हमें हमारी परीक्षा लेते हैं। नलकुंवर मणिगिरी को देखिए, उन्होंने श्राप दिया, तो वहां पर नारद जी क्या कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं कि एक गरीब व्यक्ति का आप कैसे भी संग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गरीब व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं है, उसको तो अपने ही खाने पीने का वो नहीं है कि कब खाएगा कब पिएगा, और रहने की जगह भी उसके पास नहीं है, कपड़े भी उसके पास बहुत कम है, यानी कि गरीब व्यक्ति के साथ रहेंगे कुटिया में तो वैराग अपने आप आएगा। लेकिन नारद जी कहते हैं धनी व्यक्ति का तो कभी हमें संग करना नहीं चाहिए, क्योंकि धनी व्यक्ति जो है, इसका बाइबल में भी बताया है कि सुई से क्या है हाथी को निकालना आसान है, लेकिन एक धनी व्यक्ति के लिए धाम जाना बहुत मुश्किल है। ऐश्वर्य के कारण आसक्ति हो जाती है, इसलिए आप देखिए यहां पर बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा धन है फिर भी मंदिर आ रहे हो, बहुत कम। अधिकांश जो भक्ति स्वीकार करते हैं, अगर गांव जाएं आप या ऐसे गरीब इलाकों में जाएं, वहां पर देखिए भक्ति लोग फटाफट स्वीकार करते हैं, फटाफट माला पकड़ लेंगे, आप एक बार उनको बोलिए माला भी शुरू कर देते। लेकिन धनी व्यक्ति को, विद्वान व्यक्ति को, जिसका अच्छे कुल में जन्म हुआ है, जो बहुत सौंदर्य है जिसके पास, शरीर इसका बहुत स्वस्थ है, इस प्रकार का ऐश्वर्य किसी के पास है, उसको आप प्रचार कर देखिए बहुत मुश्किल है। इसलिए IIT में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्रचार करना बहुत मुश्किल होता है कि नहीं? आप गांव में जाइए, लड़कों को पकड़े यूपी में जाइए, ट्रक भर के ला सकते हैं आप भक्त। लेकिन आप IIT में जाइए, साल में एक या दो भक्त निकलते मुश्किल से, नहीं? क्यों? क्योंकि IIT में आप जाएंगे, इतना ऑपुलेंस है विद्वत्ता का, उनको लगता है कि हम IITian हैं, इसी में बहुत खुश हैं। वो अभी उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया है, ग्रेजुएशन भी नहीं किया है, केवल इसलिए कि वो IIT के अंदर पढ़ रहे हैं, उसी में उनका अहंकार इतना ज्यादा है, उसीलिए वो सोच बैठते हैं कि हमारे पास सारा सुख है, इतना ज्ञान है, हम IITian हैं। तो इस वजह से क्या, लेकिन ऐसे लोग अगर भक्त बन जाते हैं, वो सैकड़ों लोगों को भक्त बना सकते हैं, अपने ऐश्वर्य के द्वारा, अपनी विद्वत्ता के द्वारा, अपने भौतिक ज्ञान के द्वारा वो सामान्य लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। देखो मैं IITian हूं फिर भी माला कर रहा हूं, आ जाओ, ये फायदा है। इसलिए हमारे संस्था में युक्त वैराग्य का बड़ा महत्व है, इसलिए ऐसे लोगों को त्यागा नहीं जाता है, उनके ऊपर प्रयास, उनके ऊपर मेहनत की जाती है। ऐसे जो धनी लोग, ऐसे विद्वान लोग और ऐसे अच्छे कुल में जन्म लिए हुए लोग, ऐसे सौंदर्य युक्त लोग, ऐसे लोगों को जब भक्त प्रचार करते हैं, उनको भक्त बनाते हैं, तो भक्तों की तादाद बहुत तेजी से फैलती है, भक्तों की संख्या बहुत तेजी से फैलती है, क्योंकि सामान्य लोग यही चाहते हैं और वो ये भक्तों में देखते हैं तो लगता है अरे ये तो इस्कॉन का भक्त बनना बहुत फायदा है ना, इस्कॉन के भक्त बनते हैं तो कितना ऐश्वर्य है, ये इतने खरबपति व्यक्ति हैं, ये माला भी करते हैं, हमें भी करना चाहिए, हम भी बन जाएंगे ऐसे। तो इस चक्कर में क्या होता है, इस लालच में लोग इस्कॉन से जुड़ जाते हैं, ये भी एक कारण है इस्कॉन से लोग जुड़ रहे हैं आज, और खासकर भारत में तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग इस्कॉन से क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि इंडियंस देख रहे हैं वो इस्कॉन में इतना ऑपुलेंस है, इतना कुछ इनके पास है, इतना विद्वान लोग इनके पास है, इतने सारे IIT से, इतने सारे इंजीनियर्स हैं। अभी वहां पर जो नेशनल फेस्टिवल हुआ था, यूथ फेस्टिवल पूना में, वहां 5,000 से ज्यादा इंजीनियर्स आए थे उस यूथ फेस्टिवल में, इतने सारे इंजीनियर्स जुड़े इनके साथ, है ना। इसका मतलब यह है कि हम भी अगर जुड़ेंगे इनके साथ तो हम भी जो है क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो इस तरह से ये एक तरीका है। इसलिए जो है प्रभुपाद ने कहा कि अगर हमें शिकार ही करना है तो गेंडे का शिकार, तो ये सब समाज के गेंडे हैं, ये सब गेंडे हैं समाज के, और इनको अगर आप इनका शिकार आप करते हैं तो निश्चित रूप से क्या होगा, सामान्य लोग तो वैसे ही फॉलो करेंगे। लोग सदनुवर्तते, भगवान गीता में बता रहे हैं, है ना। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवतरो जना सयत प्रमाण करते लोकस तद अनुवर्तत। इसलिए क्या है कि इसलिए हमें जो है प्रभुपाद जी बहुत प्रैक्टिकल थे। हालांकि प्रभुपाद जी जब कोई ज्वाइन करता था, कोई क्वालिफाइड व्यक्ति भी होता था, उससे बर्तन धुलवाते थे, लेकिन उसी क्वालिफाइड व्यक्ति का प्रभुपाद जी उपयोग करते थे प्रचार में। जैसे भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज को बोला प्रभुपाद जी ने कि आप पीएचडी कंप्लीट करो एंड देन प्रूव टू द साइंटिस्ट दैट गॉड एग्जिस्ट, साइंटिफिकली यू प्रूव दैम। तो इसलिए जब कोई पीएचडी होगा, अगर डिवोटी पीएचडी होगा और वो साइंस के बारे में बात करेगा तो लोग सुनेंगे, प्रभावित होंगे। तो इसलिए हमें जितने भी ऐश्वर्य यहां बताया गया है उसका हम लोग सदुपयोग कर सकते हैं भगवान की सेवा में लगाकर, और इस तरह से फिर माया के जाल से हम बच सकते हैं। हरे कृष्ण।
जैसे हमारा शरीर पांच भौतिक वस्तु से बना है और प्राकृत से बना, तो देवताओं का शरीर भी क्या इसी से बना होता है?
वही ना, उनका भी शरीर इसी से बना होता है, लेकिन एलिमेंट्स उनके बड़े फाइन होते हैं, फाइन एलिमेंट्स होते हैं, जो पदार्थ होते हैं बहुत फाइन होते हैं, बहुत फाइन एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि आप दूध भी कई प्रकार के दूध है कि नहीं, उसमें गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ है। तो दूध में भी जो है एलिमेंट्स, अगर दूध का भी देखा जाए तो दूध गाय का दूध सबसे बढ़िया क्वालिटी का माना जाता है। तो इसी तरह से देवताओं का शरीर जो है, उनके जो भौतिक पदार्थ उनके शरीर में यूज किए गए वो फाइन क्वालिटी के हैं।
जैसे हम लोग देहात में बुद्धि में रहते हैं, तो देहात में बुद्धि वाला व्यक्ति को भगवान की भजन करता, तो देहात में बुद्धि वाला व्यक्ति डायरेक्ट राधा रानी का भी भजन कर सकता है?
नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ जी बताइए अगला प्रश्न।
मुझे बहुत धन्यवाद आपने सब ऑपलन समय बचने के लिए बताया और कैसे भगवान से हम इस्तेमाल करें। लेकिन जैसे आप बता रहे थे कि जिन भक्तों के ऑपुलेंस होते हैं तो बहुत खतरा टैलेंट से रहते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं होते तो वो बहुत सेफ हैं। तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बिकॉज यू गॉट सो मेनी टैलेंटेड डिवोटीज, जिनके पास नहीं होते टैलेंट तो बहुत ज्यादा इंफीरियरिटी में डिप्रेशन करते, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे डिवोटीज को क्या करना चाहिए?
बहुत सारी सेवाएं हैं इस्कॉन में, सेवाओं की कोई कमी नहीं है। पूरा मंदिर साफ करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ, सेवा ही सेवा है। ऐसे भक्तों को सेवा देनी पड़ेगी। और इस्कॉन की खूबी यह है, संस्था की खूबी यह है कि अगर कोई मतलब मान लीजिए कोई बहुत शिक्षित भी नहीं है, भक्तों के साथ रहते रहते सब शिक्षित हो जाते। आप देखिए जो 30-40 साल पहले जो भक्त ज्वाइन किए थे उनका बैकग्राउंड थोड़ा खाफ अच्छा नहीं होगा, आज हम उनसे बात करके देखिए फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं सब लोग। स्वयं लोकनाथ महाराज जब बता रहे थे कि जब मैं आया था इस्कॉन में तो मैं इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाता था, अब महाराज बात करते हैं इंग्लिश में तो ऐसा लगता है कि फॉरेनर बात कर रहे हैं। तो इस्कॉन की खूबी यह है कि जो है अज्ञान से अज्ञान व्यक्ति भी जो है, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी जो है, या शिक्षित से अशिक्षित व्यक्ति भी जो है, वो एक क्लास हो जाता है। ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि नहीं। जिस तरह से टच स्टोन के टच में कोई भी मेटल है वो गोल्ड बन जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल स्टेप्स ये हैं, उनको सेवा में लगा जाए और की सेवाओं की सराहना की जाए, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि नहीं। हर भक्त, देखिए कोई भी भक्त ऐसा नहीं है, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसमें कोई टैलेंट ना हो, उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जो आप में कला है वो मुझ में नहीं है, जो मुझ में है वो आप में नहीं है, जो इनमें है वो आप में नहीं है। तो ऐसे हर इंडिविजुअल अपने आप में केपेबल है कुछ ना कुछ करने के लिए, वो एक्सट्रैक्ट करना होगा। और हम ही नहीं जानते हैं कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, सबसे बड़ी बात यह है केवल गुरु जानते हैं। इसलिए गुरु जो है उस पोटेंशियलिटी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये गुरु की सेवा होती है। इसी तरह से शिष्य को लगाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन किसके संरक्षण में हम हैं, इस एक्सपर्ट डिवोटी के संरक्षण में है। तो कोई भी भक्त जो है वो भले क्वालिफाइड ना हो मेटेरियली, उसको क्वालिफाई बना किया जा सकता है, क्वालिफाइड बना जा सकता है। ठीक, हरे कृष्ण। ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद।